وقال أركها للذي ظن، उसको जिसके बारे में उनको यकीन था, अन्नहु नाजिब मिनहुमा, कि जो निजात पा जाएगा इन दोनों में से, यानी वो जो साकी था, जो शराब पिलाने वाला था, उससे फरमाने लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उज़कुरनी इंदा रब्बिक, मेरा जिक्र कर देना अपने आका के पास। यानी क्या जिक्र कर देना कि एक आदमी है बेगुनाह, वो जेल के अंदर पड़ा हुआ, तो उसका जरा मतलब केस देख लें जरा, तो इस तरह से मेरा जिक्र कर देना। अब ये किस लिए था? ये जाहिर है एक सबब इख्तियार करने का था, एक तदबीर इख्तियार करना था, और सबब इख्तियार करने में कोई हरज नहीं है। इंसान दुआ तो करे मगर असबाब भी इख्तियार करे, हाथ पैर भी मारे जहां तक मार सकता है। तो फिर वो, अब यहाँ पे और डिटेल नहीं आई, मगर वो फिर चला गया, रिहा हो गया। वाकई ऐसा ही हुआ जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बताया था। तो जब वो रिहा हो गया तो फअंसाहु शैतान, तो शैतान ने उसको भुला दिया। क्या भुला दिया? जिक्र और रब्बी ही, अपने आका के पास जिक्र करना। देखिए शैतान की टैक्टिक में से एक ये भी होता है कि वो इंसान को अहम चीजें या नेकी की बातों को भुलवा देता है। मसलन आप, आपका इरादा है, आपकी नियत है कोई नेकी का काम करने की, मसलन आपकी नमाज पढ़ने की नियत, शैतान ऐसा भुलवाता है। आप देखिए सूरह कहफ में मूसा अलैहिस्सलाम ने गुलाम से फरमाया था ना मछली का, तो कैसे फिर बाद में उन्होंने फरमाया कि शैतान ने मुझे भुला दिया। तो शैतान फराइज भुलवा देता है, नेकियां करना भुलवा देता है, इसी तरह वो इंसानों को नेकी से पीछे कर देता है। आपने अगर सोचा हो कि मैं चलो आपसे कुरान पढ़ना शुरू करूँ, उसके बाद याद ही भूल गया, फिर कहीं कितने दिनों बाद जाके याद आया कि वो ये काम करना था, याद रखिए ये शैतान की चालें हैं। अच्छा अब ना बाज लोगों ने यहाँ पे एक और भी तफसीर की है जो सही मालूम नहीं होती, लेकिन मैं जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि वो बाज ने लिखा कि फ़ानसा हु की ज़मीर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को शैतान ने भुलवा दिया अपने रब का जिक्र करना, कि वो अल्लाह को तो भूल गए और उन्हें इस कैदी को कहा कि तुम में अपने बादशाह के पास जाके जिक्र करना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का जिक्र ही भूल गया और शैतान ने बुलवा दिया। तो ये सही तफसीर नहीं लगती, इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के पैगंबर हैं, वो तो अल्लाह ताला को किसी जगह भी नहीं भूले थे, कहीं पर भी नहीं भूले, तो अब जाके उन्होंने क्यों भूल जाना। लिहाजा यहाँ पे हु की जमीर जो है वो कैदी की तरफ ही है कि जो रिहा हुआ। अब देखें वैसे भी बहुत बात माकूल भी लगती है, जब इंसान किसी मुश्किल से निकल के आसानियों में जाता है तो उसको भूल ही जाता है कि वो कभी कोई मुश्किल के दिन थे, या वहां पे क्या बातें हुई, या किससे मिले, वो फिर इतना मगन हो जाता है अपनी न्यू लाइफ में जाके, उसको कहाँ याद रहता है कि वो पहले किसी ने मुझे कुछ कहा था, कहाँ पुराने दिनों को इंसान वैसे ही भूल जाता है, और खास तौर पे जो तकलीफ के दिन होते, जरा उसको आसानी मिलती है उसको नहीं याद रहता। तो फला भी तफिस सिजनी बेदा सिनीन, तो ठहरा रहा वो कैद खाने में मजीद साल, चंद साल, और बिदा मैंने आपको बताया 3 से 9, तो आज मुफसिरीन ने लिखा कि 8-9 साल तक फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में ही रहे। जब ये पढ़ते हैं हम किस्सा यूसुफ, तो फील नहीं होता कि कितने तहम्मुल वाले थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, कितना उनका सब्र था, कोई शिकायत नहीं, कोई बात नहीं कि हाय आप वो देखो उसको भी कहा था उसने भी ना सुना, और जाहिर है दुआ भी अल्लाह से करते होंगे, अल्लाह के नबी हैं, अगर उसको कहा तो इसका मतलब अल्लाह से नहीं कहते होंगे क्या, अल्लाह से दुआएं नहीं करते होंगे, लेकिन हाय मैं तो अभी तक यहीं पे पड़ा हूँ, पता नहीं मेरा तो कभी यहाँ से निकलना होगा या नहीं, मैं तो दुआएं मांग मांग के थक गया हूँ। थोड़े दिन हम दुआ मांगे तो हम कहते हैं बस थक गए, मेरी तो दुआ ही नहीं कबूल होती, और वो सुभान अल्लाह 8-9 साल तक कोई थोड़ा टाइम होता है, और अभी पता ही नहीं कि कब निकलना है या कभी निकलूंगा भी कि नहीं, लेकिन अल्लाह पे भरोसा, और आगे आप देखेंगे कि कैसे फिर भी अल्लाह की याद और फिर भी शुक्रगुजारी नहीं उन्होंने छोड़ी। और ये भी हमें पता चलता है कि हर काम का एक टाइम होता है अल्लाह की तरफ से। आप ये नहीं कह सकते कि जो मेरी टाइमिंग है ना उसके मुताबिक ही सारे काम होने चाहिए। तो इसलिए ये अपनी टाइमिंग को ना रखें कि हमने ये सोचा कि ये आज मैंने दुआ की कल हालात ठीक हो जाएं। ठीक क्यों नहीं हुए और क्यों नहीं हो रहा है तो हम फाइट करना ही शुरू हो जाएं अल्लाह से, या कोई गिले शिकवे शुरू कर दें, या कोई ऐसी बातें कहने शुरू कर दें जो कि मुनासिब नहीं है। नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला चाहता तो साकी को याद दिला देता। आगे बादशाह के ख्वाब से उसको याद आ ही गया था, तो अल्लाह चाहता तो बादशाह को पहले ही ख्वाब दिखा देता। मगर अभी अल्लाह ताला ने, हो सकता है कोई काम लेना था यूसुफ अलैहिस्सलाम से जेल में, या अल्लाह ताला ने उनको कोई मजबूत करना था, या अल्लाह की क्या हिकमत थी शायद हम कभी जान ना सके। सुभान अल्लाह। वकाल अल मलिकु, और फिर वो साल हा साल गुजरते रहे। अब देखें 8-9 साल गुजर गए, तो एक दिन बादशाह ने कहा, इन्नी अरा सबा बकरात इन सीमान, मैंने देखा है 7 गायें जो कि बड़ी मोटी ताजी हैं, या कुलुहुन्ना सबा ने जाफुन, वो खा रही हैं 7 पतली गायों को, व सबा सुम्बुलातिन खुदरिन व उखरा या भी 7, और 7 बालियां मैंने देखी हैं, और 7 में और मैंने जो सब्ज हैं और सरसब्ज हैं ग्रीन है, और 7 ऐसी बालियां देखी हैं जो खुश्क हैं, और जो सूखी हैं वो उसने देखा कि सब्ज पर लिपट गई हैं। जो पतली गायें हैं, मोटी ने नहीं पतली को खाया, पतलियों ने मोटी को खा लिया, मोटी गायों को। तो अब ये क्या ख्वाब है? बादशाह ने सोचा कि ये ख्वाब जरूर इसका कोई मतलब है। क्योंकि अल्लाह ताला भी जब उसने कहीं अल्लाह ने कोई काम करना होता है ना, तो उसके सबब वो खुद ही जानता है। हमें वाजा हमें तो समझ नहीं आती ये होगा कैसे, अब ये निकलेंगे कैसे वहां से। वो तो जिन्होंने उनको डाला था वो भी डाल के भूल गए, पता नहीं अब यहीं पे पड़े रहेंगे। कौन इनकी फरियाद रसी करेगा? उनका तो बाहर कोई खानदान भी नहीं था जो जाएगा, कहीं भाग दौड़ करेगा, कोई मुकदमे करेगा, कोई और अपील करेगा, कोई वकील कराएगा, कोई कुछ करेगा। किसी को भी नहीं पता यहाँ पड़े हुए हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला की तदबीरें यकीन करें वही जानता है। कैसे अल्लाह ने उसको ख्वाब दिखाया, उसने कहा या अय्युहल मलऊ, मेरे सरदारों, मेरे दरबार वालों, अफ्तूनी फी रुया, मेरे ख्वाब की जरा कोई ताबीर तो बताओ। इन कुन तुम ले रोया ताबुरून, अगर तुम्हें को ख्वाबों की ताबीर आती है तो कुछ बताओ मुझे कि ये किस किस्म का ख्वाब है मैंने जो देखा। आप ये ख्वाब ना सच्चा ख्वाब उसने देखा था। इससे पता चलता है कि काफिर का ख्वाब भी सच्चा हो सकता है, बादशाह का ख्वाब भी सच्चा हो सकता है। ठीक है, तो ख्वाब के सच्चा होने की ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई मुसलमान ही हो तो उसका ख्वाब सच्चा होगा। और इससे पता चलता है कि हर मजहब वालों को ये पता है कि ख्वाब ऐसे ही नहीं होते, कुछ ना कुछ इनके पीछे होता है। तो पहले वो कैदियों के ख्वाब थे, अब आपने सुन लिया बादशाह का ख्वाब। कालू अदगास आलामा, अब उनको तो कुछ समझ ही नहीं आया, उन्होंने कहा बस ऐसे ही बड़ा गंदा सा ख्वाब है, यानी ऐसे ही बस कोई बेसलेस, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अब तो बस ऐसे ही जो ख्वाब ख्याल होते हैं इंसान के वो ख्वाब। मैंने जैसे आपको बताया था कि बाज शैतानी ख्वाब होते हैं, बाज जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होते हैं चीजें वो होती हैं, तो बस ऐसे ही बेसलेस का ख्वाब है, इसके पीछे कुछ हकीकत नहीं है। वह माँ नाहनू भी तावील आहलामी भी आलिमीन। अब देखिए बादशाह ने कहा रोइया है और ये कह रहे हैं आहलाम है, तो दोनों में फर्क समझ आ गई। तो उन्होंने कहा कि हम तो हमें तो नहीं पता कि इसकी क्या ताबीर हो सकती है। वकाल अल्लदी नजा मिनहुमा, उस वक्त वो जो साकी था उसको याद आ गया, जो निजात पा गया था उन दोनों में से, यानी जो साकी था, कि ये उसको वद्दकर बाद उम्मतिन, और उसने याद किया एक मुद्दत के बाद, यानी अब उसको वो भूली हुई बात याद आ गई कि मुझे भी तो ख्वाब आया था, तो मुझे ख्वाब की ताबीरों में बिल्कुल सच्ची बताई थी। तो उसने कहा अना उनबी हुकुम भी तावील ही, मैं आपको बताता हूँ इसकी ताबीर, फअरसिलूनी, मुझे भेजें आप, यानी मैं जरा जेल में जाऊं, वहां पे एक बंदा है वो इस तरह ख्वाब ताबीर बता सकता है, तो मुझे आप भेजें। तो देखें अब कैसा जमाना गुजर गया, कैसे अल्लाह ताला ने असबाब बनाए, कैसे ख्वाब आया, कैसे वो बंदा वहां पे था, वो तो गिव अप कर दिया, वो कुछ बता देते तो शायद वहीं पे बात खत्म हो जाती। उन्होंने भी कहा हमें तो कुछ नहीं समझ आ रही, हम ये तो ऐसा सा ख्वाब लगता है, इसकी कोई हकीकत नहीं। तो आप ये देखें, जो हम फिक्र करते ना, ये कैसे होगा मामला, तो उसको अल्लाह के ऊपर ही छोड़ दिया करें कि अल्लाह तुझे ही पता तूने कैसे करना है, बस तू कर देना। ये मैं मुश्किल में हूं तो मुझे निकाल देना, मुझे ये भी नहीं पता कि कैसे इससे निकलना, मेरे पास इसका हल नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि इसका रास्ता क्या है निकलने का, लेकिन अल्लाह को तो पता है ना कैसे निकालना है मुश्किल से। अल्लाह को ये भी पता था यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस कैद से अब कैसे निकालना, अल्लाह को ये भी पता है कब निकालना है, टाइम तरीका सब कुछ वो अल्लाह ही जानता है, और उसके अपने ही तरीके हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बैठे में जो वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने कर ली, लेकिन जब अल्लाह ने निकलवाना है तो फिर देखें उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा। और मतलब है कि जिंदगी ने में ना बड़ी सब्र के साथ रहना पड़ता है, जल्दबाजियों से काम नहीं होते, तहम्मुल के साथ चलते रहना पड़ता है, ये सोच के कि अल्लाह के हाँ भी इसका एक वक्त मुकर्र है और ये काम अपने वक्त पे ही होना है। मैं चाहे जितनी भी जल्दियां मचा लूं, चाहे वो जल्दियां करने से मैं कितनी भी यानी एंजाइटी और बेसब्री का शिकार रहूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इंतजार की घड़ियां भी एक दिन खत्म हो ही जाती हैं। वो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जेल में पहुंचा, यूसुफ वो ए यूसुफ अय्युह सिद्दीकू, ए सरापा सच्चाई। अब देखें जरा कि यानी आके ना कोई ये कि भाई मैं जो इतने सॉरी, मेरे साथ इतना लंबा अरसा गुजर गया, मैं भूल गया था, अफ्ती ना फी सबाई बकरात इन सीमान इन या कुलुहुन्ना सबने जाफ, मुझे तो बस जल्दी से आप बताओ कि क्या है इस ख्वाब की ताबीर क्या है, कि 7 मोटी गायों को 7 पतली गायें खा रही हैं, वसावे सुम्बुलात इन खुदरिन, और 7 ही बालियां हैं जो सरसब्ज हैं और 7 ही ऐसी हैं जो खुश्क हैं, तो इसका क्या मतलब है ये मुझे बता दें। अब देखें कि उसने भी आके एग्जैक्ट सेम इसी तरह बताया जैसे बादशाह ने बताया था, ताबीर भी अगर लेनी हो तो सेम उसी तरह बताया जाए, ये नहीं कि कुछ और ही अल्फाज इस्तेमाल कर ली हो, एग्जैक्ट सेम, वरना इंसान सोचता है यहाँ पे वही बात क्यों आई। इसका मतलब है ख्वाब की ताबीर ऐसे ही नहीं होती, कुछ छोटी बात नहीं होती, कुछ भी इधर उधर करने से उसकी ताबीर बदल सकती है। अब ये कौन है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया? ये वो है जिसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ख्वाब की ताबीर बताई थी और उसको कुछ काम कहा था ना, कुछ काम कहा था जो उसको भूल गया था। ठीक है, अच्छा अब ये याद रखिएगा, लअल्ली अर्जिउ इलन नास लअल्लहुम यअलमून, ताकि मैं लौटूं लोगों की तरह शायद कि वो जान ले, मैं तो जाऊं और जाके दरबार में बताऊं उनको, वहां पे वो सब वेट कर रहे हैं ताबीर मालूम करने के लिए, लालम शायद कि वो जान ले, ये भी मतलब हो सकता है ख्वाब की ताबीर जान लें या वो आपके बारे में जान लें। अब ये देखिए ना, यूसुफ की जिंदगी में अभी भी ये हो रहा है और बाद में भी होगा कि वही लोग जिनसे उनको तकलीफ पहुंचती है, फिर उसके बाद वही उनके पास आ जाते हैं किसी हाजत के लिए, कोई उनको ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि वही आ गए सामने। अब देखिए ये कितनी कितनी मुश्किल उठाई है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त से, कि वो इतने साल जेल के अंदर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये आदमी वहां पे जाके भूल ही गया। अब ऐसे बंदे को तो इंसान का दिल करता है कि इसको खरी खरी सुनाए, ऐसे बंदे को तो दिल ही नहीं करता कि बात करे। कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम आरामदेह जिंदगी में तो नहीं बैठे हुए, जेल में बैठे हुए, और उसके ऊपर ये कि एक आदमी को एक काम कहा और उसको वो करना ही भूल गया, और अब वो चला आ रहा है अपने काम के लिए और बगैर किसी किसी माजरत किए हुए, बगैर किसी अफसोस को किए हुए कि मेरे से भूल गया, या कोई भी उजर बयान तो करे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा तुम्हें कुछ काम कहा था या नहीं? तुम कैसे आदमी हो? यहां उसको कोई बुरा भला कहते? चलो बुरा भला नहीं कहते तो कम से कम सवाल तो पूछ लेते उससे, तुम किधर रह गए थे? कुछ बात ही नहीं। काला तजराऊना सबा सिनीन दा दआबा, फरमाया तुम खेती बाड़ी करोगे 7 साल मुतवातिर। फमा हसद तुम फजरूह फी सुम्बुली, फिर तुम काटोगे, फिर जो तुम काटोगे फजरूह तो छोड़ देना उसको उसकी बालों में। इल्ला कलीला, मगर थोड़ा थोड़ा खा लेना, थोड़ा छोड़ देना। मिम्मा ताकुलून, उसमें से जो तुम खाते हो। अब वो ताबीर क्या बता रहे हैं कि जो तुम काटते हो हर साल फसल, तो उसमें बालों में थोड़ा खा लेना और थोड़ा छोड़ देना। ये 7 साल तक ऐसा करना मुतवातिर, तुम वो जो खेती बाड़ी कर रहे हो उस तरह ही उसको काटते रहना, उसी तरह यानी स्टोर करते रहना, बचत करते रहना, बचाओ अपने आगे के दिनों के लिए। अब ये ताबीर में तो, ख्वाब में तो ये नहीं कुछ बात आ रही। ताबीर भी बताई और हल भी बताया, इसलिए कि जो 7 मोटी गायें हैं वो अच्छे दिन हैं जिसमें हरियाली है, जिसमें फसलें हैं, और 7 पतली गायें हैं वो जो कहत के साल हैं। 7 साल कहत के आएंगे, 7 हरी बालियां और 7 जो हैं खुश्क हैं। जो खुश्क वालियां वो हरी वालियों के ऊपर लिपट जाएंगी, यानी ये जो खुश्क साल आएंगे, जो कहत वाले साल आएंगे, ये खा जाएंगे सारा उनको जो सब सब सर सब्ज वाले थे। सुम्मा याती मिन बादी जाले का सबुन शिदादुन, फिर तुम्हारे ऊपर कहत के साल आएंगे। या कुल नमा कद्दम तुम लहुन्ना, फिर उसमें से खाना जो तुमने इनके लिए सेव किया है, जो इनके लिए पेश करोगे आइंदा सालों के लिए, जो तुमने बचत करके रखा हुआ था, जो तुमने आगे के लिए पेश किया था। कद्दम तुम आगे के लिए होता है ना, तुमने आगे के लिए भेजा हुआ था उसको खा लेना, यानी जो तुमने पिछले फर्स्ट 7 ईयर्स स्टोर किया था। अब जब 7 नेक्स्ट कहत वाले साल आएंगे तो उसमें वो जो तुमने यहाँ के लिए इस वक्त के लिए बचा के रखा हुआ था उसको खाना। लहुन्ना इल्ला कलीला मिम्मा तुहसिनून, मगर थोड़े इसमें से जो तुम रोक रखोगे, उसमें से थोड़ा तुम वो जो तुमने थोड़ा सा रोका हुआ था उसमें से खा लेना। सुम्मा याती मिन बादी ज़ालिका आमुन, फिर आएगा तुम्हारे पास इसके बाद एक साल। फी युगासुन्नास, जिसमें फरियाद रसी की जाएगी लोगों की, जिसमें यानी बारिश होगी। मैंने आपको बताया ना गईस बारिश को भी कहते हैं, तो लोगों की फरियाद रसी होगी यानी अब बारिश खूब बरसेगी, लोगों की सुनी जाएगी। वफी यासिरून, और इसमें वो निचोड़ेंगे, रस निचोड़ेंगे यानी खुशहाली के फिर साल आएंगे। ये कैसे पता चला कि यहाँ पे? तो ये पता चल रहा है कि सबा इजाफ है और सबा जो है सीमान है गाय, और फिर हमें सबा जो है वो सुम्बुलात खुदरिन मिल रही हैं और याबी साथ भी मिल रही हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? असल में जो कहत के 7 साल हैं वो खत्म कैसे होंगे? पता चला कि 7 ही साल हैं, 7 से ज्यादा नहीं है। सिनीन 7 हैं क्योंकि गायें 7 हैं जो पतली हैं, और बालियां भी 7 हैं जो खुश्क हैं। तो इसका मतलब उसके बाद खुशहाली का कोई दौर आएगा ही, जो वो कहत भी खत्म होगा और खाना पीना भी वापस आएगा ना? कहत खत्म होने के लिए जरूरी है ना कि बारिश हो, हरियाली हो, सब्जा हो, फिर ये जो भूख पड़ी भी है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने इससे, ये उनकी हिकमत थी, फिरासत थी, कि जो 15th ईयर आएगा ना उसके अंदर फिर कहत खत्म हो जाएगा, उसके अंदर फिर खुशहाली वापस आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखें कि कितनी यही बात है ना, अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया था, ये वो इल्म है जिसका मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ही की तरफ से होता है। ठीक है, चाहे तो चाहते तो ना बताते ये उसको ताबीर, चाहते तो कहते कि मैंने नहीं बतानी, मुझे नहीं समझ आती, जाओ अब जाके कहीं और से ही पूछो, लेकिन बताई भी। और ये ऐसे लोग हैं जो कि मुसलमान नहीं है, ये कंट्री मुसलमानों का नहीं है। अब सोचते तो कहत से अच्छा है मर जाएं, ये मुसलमान तो है नहीं, तो मुझे क्या, मरे या कुछ भी हो, इनके साथ जो भी हो, मैं क्या जानू, मैं मुझे इनकी क्या फिक्र है। लेकिन देखें, अब यहाँ पे एक पैगंबर का किरदार पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई चीज को मतलब से एक अपने पास इल्म है तो उसको आगे ना दें या उनको हाल ना बताएं। और फिर दूसरी बात ये देखें, आज वो लोग, वही आदमी जो के जाके इनको भूल गया, वही आदमी सवाली बन के खड़ा हुआ है, उसके साथ जो उनका बर्ताव है वो भी इतना काबिले तारीफ है। और इसी वजह से हमें ये बात को समझना चाहिए कि इस जिंदगी में कई दफा ऐसा होता है कि आज जो एक मनसब पे, कुर्सी पे बैठा हुआ है या एक पावर में है, आज जो किसी जगह पे है, वो कल को हो सकता है उस जगह पे ना हो और दूसरा उसकी जगह पे आ जाए। यानी ये आदमी जो पहले ये सवाली था, ये पहले यूसुफ अलैह सलाम के पास आया था और यूसुफ अलैह सलाम ने इसके साथ एक नेकी की, अब वो बाहर चला गया, वो आजाद हो गया। अब देखें, नेकी करने का बदला तो ये होना चाहिए था कि नेकी से ही जवाब देता, लेकिन उसके बाद एक दिन फिर उसको, जब उसने यूसुफ अलैहि सलाम के साथ वो सलूक नहीं किया जो करना चाहिए था, एक दिन अल्लाह ताला ने उसको फिर जरूरत डाल दी यूसुफ अलैहि सलाम की। बहुत दफा जिंदगी में ऐसा होता है, हम सोचते हैं हमें क्या परवाह, अब तो हमें उनकी क्या परवाह, अब तो भूलो उनको या अब उनके छोड़ो उनको, अब वो गुजर गए, चले गए, अभी यहाँ पे नहीं। आपको नहीं पता वक्त कहाँ पे आपको लाके किसके सामने खड़ा कर दे। जिंदगी में बहुत दफा ऐसे होता है कि वही बात जिसको कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, या जिसको हम कहते हैं कि जो जिनको हम सोचते हैं कि ये दुनिया गोल है कि ये आज आपके सामने कोई आया, कल को फिर किसी ना किसी और सूरत में वो ही आपके सामने आ जाए, कल को आपको किसकी जरूरत पड़ जाए आप नहीं जानते। लिहाजा हर एक के साथ अच्छा ही करें, ये कभी ना सोचें आप तो छोड़ो, अब तो हो गया, अब तो गुजर गए, अब तो पता नहीं वो कहाँ है या अब तो कैसा है, हमने कौन सा इनसे दोबारा मिलना है, जैसे मर्जी इनके साथ कर लें सलूक। नहीं, आपको नहीं पता अल्लाह ताला कब किसको किस पोजीशन में कर देता है। आप देखने को यूसुफ अलैहि सलाम तो एक कैदी हैं, उनके पास तो इस वक्त कोई पावर नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने जरूरत बना दिया इन लोगों की यूसुफ अलैहि सलाम को। इनको अब यूसुफ की जरूरत पड़ गई ना, अब क्यों निकल के तो सोच रहा होगा अब क्या, अब छोड़ो, अब कैद के साथियों को कौन याद करे और कौन उनको जाने या कौन उनका पूछे, उसने पलट के भी नहीं कभी देखा, याद ही नहीं उसको कभी आया। लेकिन कभी इंसान को जरूरत पड़ जाती है, दिन एक से नहीं रहते, कभी आपको छोटे से छोटे आदमी की भी जरूरत पड़ जाती है, जिसको आप सोचते हैं कि इसकी क्या मुझे जरूरत पड़ेगी, छोटे से छोटे ओहदे वाले की भी। और चूंकि उनके अंदर आजी थी, इसलिए उन्होंने उसका भी काम कर दिया। अगर तकब्बुर होता तो अकड़ जाते उस वक्त, नहीं करता मैं तुम्हारा काम। तो जब भी आपको अल्लाह ताला कोई इल्म दे ना जो आपके पास है, या कोई महारत है आपके पास, या कोई ओहदा है आपके पास, या कोई भी स्किल है आपके पास, अकड़े नहीं। उन लोगों के सामने भी ना अकड़े जिन्होंने आपके साथ कोई अच्छा नहीं किया। जाए, और जैसे कि हर पैगंबर के अंदर एक खैरख्वाही होती है, तो इनमें भी खैरख्वाही थी, इसीलिए उनकी खैर ही चाही कि ये लोग बच जाएं। और निचोड़ने से क्या पता चलता है कि वो निचोड़ेंगे, यानी इसका मतलब खुशहाली आ जाएगी, तभी तो दूध इतना होगा या फल इतने होंगे, अंगूर इतने होंगे कि दोबारा निचोड़ा जाएगा, शराब कशीद की जाएगी, जो कि तो जब आपकी जरूरियात पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद की होती है ना। वकाल अल मलिक तूनी भी, तो कहा बादशाह ने, जब उसने जाके बादशाह को बताया तो बादशाह ने कहा कि उसको तो मेरे पास लेकर आओ, इतनी फहम और फरासत, इतनी जबरदस्त बात, तो ऐसा आदमी वहां क्या कर रहा है। फलम्मा जाअहु रसूलु, तो जब गया, यहाँ पे रसूल का मतलब वो रसूल नहीं है कि जो आप समझें कि पैगंबर जो होते हैं, बल्कि रसूल का लुग भी माना, जो डिक्शनरी मीनिंग है वो तो यही है कि जो पैगाम पहुंचाने वाला है, तो वो जो पैगाम पहुंचाने वाला था वो जब पहुंचा है और उसने कहा है कौल कौलर्जी इला रब्बी का, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, तुम वापस जाओ अपने मालिक के पास वापस जाओ, फसअल हुमा बालुन निस्वती, तो उसको जाके ये कहो कि क्या मामला था। बाल का मतलब होता है मामला, हाल, क्या हाल था किसका। निस्वतल्लाती उन औरतों का, अल्लाती एक के लिए होता है वाहिद के लिए और अल्लाती जमा के लिए मुअन्नस जमा, कि उन औरतों का हाल क्या था। कत्ताना ऐदियाहुन, जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। अब ये नहीं फरमाया यूसुफ अलैहि सलाम ने कि वो इमरातुल अजीज का क्या हाल था, उसके जरा मामला तो पता करें, जिन्होंने मुझे जेल करवाया, जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाके रखा हुआ है, तो ये नहीं, बल्कि क्या वो औरतें जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। और इसमें क्या हिकमत थी, एक तो ये भी बात है कि अगर अजीज मिस्र की बीवी का नाम लिया जाता तो उसकी भी रुसवाई होती, और जब औरतों को बुलाया जाएगा तो सारा मामला खुल ही जाएगा। तो अजीज के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे थे और उसकी वो उनको अपना मोहसिन समझते थे, इसलिए उन्होंने उसकी कोई बात नहीं की कि उसको बुलाया जाए, उससे पूछा जाए, उसको कहा जाए, और या उसकी बीवी को बुलाया जाए, बस उन औरतों को बुलाया जाए। इन्ना रब्बी भी कैदीहिन्ना आलीम, बेशक मेरा रब उनकी चाल से वाकिफ है, मेरा रब तो जानता है ना कि जो चाल चली गई मेरे खिलाफ, अल्लाह को तो पता है। यानी यहाँ पे यूसुफ अलैहि सलाम को जब बादशाह ने पैगाम भिजवाया, एक तो सबसे पहली तो बात ये कि देखें बादशाह ने भी कितनी उसकी खूबी थी कि उसने पहचान लिया कि यूसुफ अलैहि सलाम मामूली आदमी नहीं है, वो बहुत काम के इंसान है, वो वहां पे क्या कर रहे हैं। तो ये भी एक लीडर की बड़ी क्वालिटी होती है कि वो किसी बंदे में उसकी खूबी पहचान ले, क्योंकि अगर आप किसी की काबिलियत देख के पहचान ही नहीं सकते तो आप उससे फायदा भी नहीं ले सकते, कोई काम भी नहीं उससे करा सकते, आपको समझ ही नहीं आती इसमें क्या काबिलियत है, फिर तो ना अहल लोगों को काम दे देंगे। ठीक है, तो उसने उनको बुलाया वहां से कि इतना काम का आदमी, और ये वाकई सही बात उसने की है। और दूसरी ये बात कि यहां से हमें ये भी पता चलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उसने आके कहा कि आप चले, आपको बादशाह बुला रहा है, तो ये नहीं कहा कि अच्छा चलो जल्दी चलो चलो मैं तो पहले ही वेट कर रहा था, उन्होंने फरमाया नहीं, पहले जाके पूछा जाए कि वो क्या मामला है। क्यों ऐसे उन्होंने फरमाया, इसलिए कि देखें जो एक पैगंबर है या एक दाई दीन है या एक पाकदामन इंसान होता है ना, उसके लिए उसके कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज होती है, उसकी इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है, और अपना कैरेक्टर साफ सुथरा रखना उसको जेल से आजादी से भी ज्यादा अजीज होता है कि मेरे ऊपर एक तोहमत लगी हुई है, एक इल्जाम लगा हुआ है, पहले ये इल्जाम साफ हो तो मैं जेल से निकलूंगा, वरना भागते हैं कि जब छोड़ो इल्जाम को। अब देख लेना बादशाह अगर बुला रहा है तो इतने 8-9 साल भी गुजर गए, किसको याद होगा, स्कैंडल जब होते हैं उस वक्त के लिए होते हैं, उसके बाद लोगों को भूल जाता है, तो किसको याद होगा, छोड़ो अब चले जाते। और फिर वैसे भी जब बादशाह ने बुला लिया और इतनी वाह वाह होगी, बादशाह के दरबार में कोई इनाम इकराम दिए जाएंगे, तो फिर क्या मसला है अगर कुछ पहले कुछ इल्जाम लग भी गया था। नहीं, मगर जो पाक दामन होता है ना, उसको अपने दामन पे जरा सा दाग भी बर्दाश्त नहीं होता, चाहे बात खत्म हो चुकी है, साल हा साल गुजर चुके हैं। यूसुफ अलैहि सलाम कहते हैं अब केस को दोबारा खुलवाएं, पहले ये पता चले कि मैं बेगुनाह हूं ये साबित हो। और क्योंकि देखिए, और खास तौर पे एक दाई दीन है, एक पैगंबर है, उनकी बात को कोई तभी सुनेगा ना जब वो पाक दामन होंगे, जब उनका कैरेक्टर सही होगा, क्योंकि अगर एक इंसान के कैरेक्टर के ऊपर कोई बात आ जाती है तो बहुत बड़ी बात होती है, उसकी बात को कौन कोई समझेगा, लोग ये कहेंगे इसके ऊपर तो ये इल्जाम लगा था, और लोग बाद में भी यही बातें करते रहते हैं, हाँ जी एक दफा सुना है इसके ऊपर ये इल्जाम आया था। तो उनके लिए जेल में होना बड़ी बात नहीं थी। आप देख लें कि आज भी कई बेगुनाह जेल में, इमाम अहमद बिन हम्बल को भी जेल हुई थी, इमाम इब्ने तैमिया ने भी जेल में अपना कई जिंदगी के साल गुजारे थे। तो बड़े बड़े लोग जेलों में ना हक कैद किए गए हैं। तो जेल में होना एक बुरी बात नहीं है, मगर बोहतान लग जाना, इज्जत के ऊपर किसने किसी की औरत की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात थी। तो आपको अपने किरदार को शफाफ साबित करना वो ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट था बजाय जेल में रहने के। मजा ही बात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मैं इतनी देर जेल में रहता जितना यूसुफ अलैहि सलाम रहे हैं, और फिर मुझे रिहाई के लिए बुलाया जाता, तो मैं फौरन कबूल कर लेता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ फरमाई यूसुफ अलैहि सलाम की कि उनका कितना तहम्मुल था। फरमाया, मैं हैरान हूँ यूसुफ के तहम्मुल के ऊपर, उनके सब्र के ऊपर, कि कितना सब्र था उनके अंदर। इतने में इंसान तंग आ जाता है, परेशान हो जाता है, वो तो इंतजार कर रहा होता है कब मुझे रिहाई मिले। वो तो पता नहीं कैसे दिन और रात काट रहा होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं जाओ। व्हाट इफ वो कह दें कि अच्छा चलो ठीक है, फिर बैठे रहो यहीं। तो लेकिन यूसुफ अलैहि सलाम ने इसमें नहीं जल्दी की। फिर दूसरा, एक देखिए जो इन्होंने औरतों का जो नाम लिया है और अजीज मिस्र की बीवी का नाम नहीं लिया, इसकी एक वजह ये भी उलमा बताते हैं कि यूसुफ अलैहि सलाम की हया है, कि एक औरत का नाम लेने में भी उन्होंने हया महसूस की। और वैसे भी अगर कह देते कि वो अजीज की बीवी की बात है, तो फिर तो शायद वो उनके लिए इतनी बड़ी बात ही ना होती। तो अब एक बादशाह को भी तजस्सुस हुआ कि भाई मामला क्या है, कौन सी औरतों ने हाथों को काट लिया था। अल्लाह ताला उनकी कैद से वाकिफ है, यानी मेरा परवरदिगार जानता है कि उन्होंने जो झूठ बोला, जो मकरो फरेब किया, जो किस तरह से इल्जाम लगा के इनको जेल करा दी। इसीलिए ना तोहमत जो थी ना किसी पे लगाना, इसीलिए कबीरा गुनाह है, क्योंकि आप उसकी पूरी जिंदगी को खराब कर देते हैं। तोहमत लगाने के लिए बस एक जुबान की हरकत ही होती है और तो कुछ भी नहीं, लेकिन उससे किसी की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है, ये शायद कोई सोचता भी नहीं है बाद में। तो उन्होंने अपने ऊपर इल्जाम को क्लियर करने के लिए ये बात कही थी। इसलिए इंसान को अगर कभी मौका मिल जाए ना कि अपनी जात से इल्जाम को धो डाले, कभी अल्लाह ना करे किसी के ऊपर कोई गलत कोई ऐसी बात लगा दे, कोई तोहमत लगा दे, तो जब मौका हो तो उस बात को जरूर क्लियर करना चाहिए। ये नहीं कि हम तो इतने नेक हैं बस हम खामोश ही रहेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला मौका देता है। قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه, उसने कहा बादशाह ने बुला के उन औरतों को कि क्या मामला है इसका, जब तुमने फुसलाया था यूसुफ को उसके नफ्स से। कुलना हाशा लिल्ला, तो वो कहने लगी ये सुभान अल्लाह, या मतलब ऐसी तो कोई बात नहीं थी। हाशा लिल्ला मतलब जैसे एक कलमा कहते ना, ऐसा तो कुछ नहीं। मा अलिमना अलैहि मिन सू, हमने तो इसके अंदर कोई बुराई देखी ही नहीं, हम तो नहीं जानते इसके अंदर किसी बुराई को, हमने को तो इसके अंदर कोई ऐसा चाल चलन नहीं देखा। तो अब वो फौरन उन्होंने, जाहिर ही बात है यूसुफ अलैहि सलाम की जो सच्चाई थी वो तो उनके सामने थी, और वो उनके सामने इमरातु अजीज कह भी चुकी थी, और वो जानती थी कि यूसुफ अलैहि सलाम का किरदार ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। अब जब वो भी ऐसा कह चुकी, तो कालत कहने लगी, कौन? इमरातुल अजीज। अब वो बोली, अब कहा जाता है कि उस वक्त अजीज मिस्र फौत हो चुका था, बास रिवायात में ये भी है। तो वो अब कहने लगी, अल अन हस हसल हक, अब तो वो हक वाजे हो ही चुका, तो मैं भी बता देती हूँ कि अना रावतु अन नफसी व इन्नहु लमिन सादिकीन। देखें, जब अल्लाह ताला तदबीर करता है ना, मजलूम की जो आह है ना वो अल्लाह ताला के अर्श को हिला देती है, और अल्लाह ताला मजलूम की जरूर मदद करता है, खा उसमें कुछ देर हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम मजलूम थे और अल्लाह ताला ने कैसे इनकी मदद फरमाई। तो कोई भी मजलूम है उसको लगता है ना कि नहीं कोई हाल नहीं है, बस कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं कुछ होना, कभी हालात नहीं संभल सकते, कभी हमारी सुनवाई नहीं हो सकती, जुल्म ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, मजलूम की अल्लाह ताला जरूर सुनता है, मजलूम के अल्लाह ताला जरूर रास्ता निकालता है जब वो सबर करता है, अल्लाह पे तवक्कल करता है। तो यहां देर है, अंधेर नहीं है, ठीक है। अब वो जब एक्सपोज हो गई है, जाहिर है वो तो सारियों ने कह दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो कुछ भी नहीं था, तो अब भाई तुम्हारे घर में ये सारा था, तुम्हारा तुम्हारे गुलाम थे वो, तो तुम अब तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं रह गया। तो उसने फिर मान लिया, जालिक लियालम अन्नी लम अखुन हूं बिल गईब, ये इसलिए कि वो जान ले कि मैंने खयानत नहीं की उसकी गायबाना तौर पे। हु की जमीर किस तरफ जा रही है? बाज कहते हैं कि अजीज मिस्र की तरफ जा रही है, कि ताकि वो जान लें कि मैंने उसकी कभी खयानत नहीं की, यानी ठीक है इस तरह से मैंने उसको सिड्यूस करने की तो कोशिश की थी, लेकिन मैंने कोई उसकी खयानत नहीं की, कोई ऐसा काम कर नहीं लिया। अपनी पाकी बता रही है ना, शौहर की खयानत नहीं की। दूसरी इसी ये भी एक तफसीर इसकी की जाती है कि ये जो 52 आयत है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का कॉल है, लेकिन ये ज्यादा सही नहीं लगती, ज्यादा सही ये लगती है कि ये इमरातुल अजीज का ही कॉल है। तो अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कॉल लें तो सब जान लें कि मैंने खयानत नहीं की उसकी गैब में, यानी किसकी, अजीज मिस्र की, मैं उसके पीछे से उसका उसकी बीवी के साथ कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं रख के बैठा हुआ था। वन अल्लाह यादि कई दल ख्वाइनीन, और अल्लाह ताला बेशक हिदायत नहीं देता खयानतकारों की चाल को, अल्लाह नहीं, खयानतकारों की चाल कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो ये भी हो सकता है कि ये फिर उसी ने कहा हो कि उसकी चाल तो कामयाब नहीं हो सकी, जो मैंने तो खयानत नहीं की थी और खयानतकारों की चाल तो कभी कामयाब नहीं हो सकती, ये वो मान गई। तो यूसुफ ने तो कोई बदकारी नहीं की और मैंने भी अपने शौहर की खयानत नहीं की, तो हक वाजे हो गया। तो इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरात, उनकी बेगुनाही साबित हो गई कि आगे जो उन्होंने अल्लाह ताला के दीन के काम करना था, लोगों को पहुंचाना था, इसके लिए ये बहुत जरूरी था। और हमेशा जो पैगंबर होते हैं उनका किरदार साफ होता है, शफाफ होता है। अच्छा, खयानत एक तो माली मामलात में होती है ना, ये भी खयानत होती है, इज्जत में खयानत। हम तो सिर्फ खयानत कहते हैं ना, ईमानदारी में खयानत करना, माल इधर उधर कर दिया, लेकिन ये देखिए ये भी खयानत है, इस खयानत से भी बचना जरूरी है। तो यहाँ पे आके हमें बहुत सारी बातें समझ में आई। एक तो हमें अल्लाह ताला की कुदरत का पता चला कि अल्लाह की ताकत है, वो ही मुसब्बबुल असबाब है, असबाब भी बनाना और किस तरह किसको कहाँ से निकालना और कैसे, ये भी पता चला हमें। ये भी पता चला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें बता रहे हैं लोगों को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ही बयान फरमाई तो आपने बताई, आप पे वही आई तो बताएं। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से ये सारी बातें नहीं बयान कर सकते थे। फिर आप ये भी देखें कि इसमें कितनी सारी बातें हैं जो हमारे लिए सबक की हैं, जो हमें सीखने की हैं, एक एक आयत में है, एक एक आयत एक मोती की तरह है। और कैसे अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को भी आजमा लेता है, हमारे पर कोई मुश्किल आ जाए ना तो हमें फौरन पहले पूछने लगते हैं, अच्छा फिर बताएं क्या आजमाइश है कि क्या है, फिर ये कब खत्म होगी, फिर क्या होगा। अल्लाह ताला ने तो अपने नेक बंदों को आजमाया है, ये अल्लाह का तरीका रहा है। इब्ने कय्यिम अल जौज़ी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के एहसानों में से है कि वो बंदे को टूटने का जायका चखाता है इससे पहले कि उसको मिठास चखाए। मिठास चखाने से पहले क्या करता है? अपने बंदे को टूटने का जायका चखाता है, तभी मिठास का भी मजा आता है। और भी देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल में भी पड़े हुए हैं तो ऐसे नहीं कि ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएं और वो कुछ काम करने के काबिल ना रहें और डिप्रेशन के अंदर सोए पड़े रहें और खाना पीना छोड़ के बैठे हुए हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं और दूसरों को, लोगों को उभार रहे हैं कि चलो यहाँ से निकलने का कुछ करो, ये तो जुल्म है और यहाँ पे इतजाज हम करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे और मुझे किस बात की गुनाह की सजा मिल रही है। और अल्लाह अकबर, कितना तहम्मुल, कितना सबर। अगर किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम लग जाए, झूठा और बेकसूर उसको डाल दिया जाए, तो उसकी क्या हालत हो, तो अपने आप को संभाल ही ना सके। मगर इंसान संभलता कैसे है मुसीबतों के अंदर? अल्लाह ताला की याद के साथ, अल्लाह पे भरोसे के साथ, अल्लाह ताला के साथ लौ लगा के। वरना कोई इंसान डिप्रेशन से और इस तरह की ट्रॉमेटाइज होने से, ऐसे हालात में कोई इंसान बचता नहीं है, बल्कि इंसान नेगेटिव हो जाता है, लोगों से नेगेटिव हो जाता है। ये लोग मतलबी हैं, ये लोग ऐसे हैं, सारी दुनिया मतलबी है। वो कहते हैं, उसको जो आया था पूछने के लिए सवाल साकी, उसको कहते कि मतलबी हो तुम, और रोते इसके ऊपर ही। और बाद लोग शायरी करना शुरू हो जाते, रो रो के हलकान हो जाते, पूरी दुनिया से उनको शिकायत होती है, गुस्सा करते हैं सारी दुनिया पे। लेकिन आप देखें, जितनी देर उन्होंने तबलीग की, आपको कैसे इंसान नजर आते हैं, बिल्कुल काम, कूल, कंपोज्ड, झुंझलाए हुए नहीं है। अपने हालात की वजह से लोगों के साथ बुरे रवैये रखने वाले नहीं है। और किसी को आज इंसाफ ना मिले तो इंतकाम की आग में जलने लगता है, मैं खुद ही कुछ करता हूं, खुद ही इंतकाम लेने खड़े हो जाते हैं। और देखो, अल्लाह ताला जब इंतकाम लेता है तो कैसा लेता है कि सब तरफ से उनको बरी उजिम्मा कर दिया, बादशाह के सामने लाके। वरना बादशाह कहाँ, बादशाह कोई, बादशाहों के पास कोई फारिग टाइम होता है कि वो लोगों के मुकदमे ला ला के सुनने शुरू हो जाए और लोगों को बुला लें और अपने सामने एक अदालत लगा लें? उनको क्या होता है, उनके पास फालतू टाइम है क्या? लेकिन अल्लाह ताला ने देखो कैसा सबब बनाया कि बादशाह की सबसे जो बड़ी अदालत है जो दुनिया के अंदर जमीन पे, वो इस बादशाह की थी, उसके पास ला के उनको बरी जिम्मा कराया। यानी कि बस आपस के अंदर ही कुछ कॉम्प्रोमाइज करके, अच्छा चलो उसको, उसने उसको कह दिया, उसको कह दिया, चलो बात खत्म करो, छोड़ो, निकालो इनको यहां से। नहीं, वहां से ये ऐलान कराया कि बादशाह के दरबार से ये ऐलान हो गया कि ये यूसुफ यानी बरी बरी है, वो बेगुनाह है। वहां पे ये बात साबित हुई। अब किसी को कोई बात कहने की जरूरत नहीं कभी होगी। तो मुश्किलात में सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, इतनी अपने आप को संभाल के चलना, सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार से पता चल रहा है।